नमस्कार भारत, 13 अक्टूबर शनिवार, मैं हूं दिनेश उप्रेती। ईरान से तेल खरीद जारी रखने के भारत के फैसले पर अमेरिका ने दिखाए कड़े तेवर।
Certainly when we hear about things such as purchasing oil or purchasing of the
कश्मीर निकाय चुनावों में तीसरे दौर का मतदान आज, कैसी है प्रशासन की तैयारी? और विवेचना में बात पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन की।
अगर गांधी जी और नेहरू और पटेल को मालूम होता जिन्ना की हालत, तो वो भी अपनी नीति बदल लेते और कहते थोड़ा टाइम और लेते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं करते और वो माउंटबेटन प्लान को अग्री नहीं करते।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक ईरान से तेल खरीदने और रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर भारत के फैसले पर अमरीका बहुत सावधानी पूर्वक समीक्षा कर रहा है। 2015 में ईरान के संदिग्ध परमाणु कार्यक्रमों और घातक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका ने बाकी प्रतिबंधों में ईरान को ढील दे दी थी, लेकिन इस साल मई में अमेरिका इस समझौते से बाहर आ चुका है और 4 नवंबर से ईरान से तेल आयात में पूरी तरह कटौती करने की कोशिश कर रहा है। खबरें हैं कि भारत 4 नवंबर के बाद भी ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। और इस सवाल पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैदर नॉरेट ने कहा कि ये मददगार नहीं होगा। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी के गायब होने और कथित हत्या को लेकर सऊदी अरब सरकार बाकी देशों से बढ़ते अलगाव का सामना कर रही है। इस मुद्दे पर कई देशों ने सऊदी अरब सरकार से सवाल किए हैं। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। तुर्की के सूत्रों ने पुष्टि की है कि उनके पास सबूत हैं कि एक सऊदी सुरक्षा दल ने इस्तांबुल दूतावास में खाशोजी की हत्या की है। सऊदी अरब इन आरोपों से इनकार करता रहा है। शफा अल अहमद सऊदी अरब की पत्रकार और फिल्म मेकर हैं। उनकी चिंता है कि ब्रिटेन और अमेरिका सऊदी अरब सरकार की जवाबदेही तय नहीं करेंगे। उन्होंने कहा,
I think when it comes to Western powers and how they behave,
मुझे लगता है कि जब पश्चिमी ताकतों की बात आती है और सऊदी अरब के साथ वे जैसा व्यवहार करते हैं, तो मुझे ये बहुत पाखंड लगता है। सऊदी अरब उस युद्ध में शिरकत कर रहा है जिसमें यमन में हजारों लोगों की हत्या हो रही है और वे इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। और जमाल खाशोजी के गायब होने के मामले में ये देश अब ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सऊदी अरब ने कोई नई बात की हो। सऊदी अरब की पत्रकार शफा अल अहमद के शब्द। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की एथलीट कमेटी की अध्यक्षा ने पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बताया कि एजेंसी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें धमकाया क्योंकि वे रूस को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वापस लाने की अनुमति देने का विरोध कर रही थीं। रूस पर सरकार सुनियोजित डोपिंग कांड के बाद 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। अध्यक्षा बेकी स्कॉट ने बीबीसी को बताया कि पैनल मीटिंग में कुछ सदस्यों ने उन पर अनुचित टिप्पणियां की। उन्होंने कहा, मेरा मतलब है कि हाव भाव के माध्यम से टिप्पणियों के जरिए वे लोग हंस रहे थे जब मैंने एथलीट कमेटियों की सूची पढ़ी जिन्होंने रूस को लेकर बयान तैयार किए थे और जो इस फैसले के खिलाफ थे। ये सारा आलम ऐसा था जिसने मुझे महसूस कराया कि यहाँ बहुत कम सम्मान है और उनके पक्ष से अलग बात कर रहे खिलाड़ियों के योगदान की बहुत कम कीमत है। ये थी विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की एथलीट कमेटी की पूर्व अध्यक्षा बेकी स्कॉट। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में आए तूफान माइकल से कुल 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। केंद्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी फेमा के प्रमुख ब्रॉक लॉन्ग ने कहा कि अभी मौतों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि बचाव दल अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे नहीं हैं। फ्लोरिडा एयरबेस में कई F-22 विमानों को नुकसान पहुंचा है। वेनेजुएला सरकार का कहना है कि उसने एक राजनीतिक कैदी को रिहा किया है जो 4 साल से कराकास में देश की खुफिया सेवाओं की इमारत की हिरासत में था। एक बयान जारी किया गया है कि छात्र नेता लॉरेंट साहले को मुक्त कर दिया गया है और इलाज के लिए स्पेन ले जाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी आशंका थी कि वह अपनी जान ले सकता था, इसलिए उसे रिहा किया गया। लॉरेंट साहले के परिवार ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है या नहीं। ये घोषणा ऐसे वक्त हुई है जब खुफिया एजेंसी की इमारत में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक विपक्ष के शासन सांसद की मृत्यु हो जाने के बाद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने वेनेजुएला की निंदा की थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को दिनेश उप्रेती का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। रूस से रक्षा सौदा करने और ईरान से कच्चे तेल का आयात जारी रखने के भारत सरकार के फैसले पर अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि भारत का ऐसा करना मददगार साबित नहीं हो रहा है। अमेरिका ने ईरान से तेल आयात बंद करने के लिए 4 नवंबर की समय सीमा तय की है। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमेरिका भारत से कई महीनों से यह कहता रहा है कि नवंबर में प्रतिबंध लगाए जाने हैं, इसलिए ईरान से तेल खरीदना बिल्कुल खत्म करना होगा। लेकिन भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा था कि भारत में 2 सरकारी रिफाइनर्स ने नवंबर में ईरान से कच्चा तेल आयात करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। अब जबकि भारत ने 4 नवंबर की अमरीकी प्रतिबंधों की समय सीमा के बाद भी ईरान से तेल खरीदने की बात कही है, तो अमरीकी विदेश मंत्रालय ने भारत को चेताया है कि ये मददगार साबित नहीं हो रहा। अमरीकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैदर नावट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसी बारे में एक सवाल के जवाब में कहा,
Certainly when we hear about things such as purchasing oil or purchasing of the S-400
जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं कि जैसे ईरान से तेल खरीदा जा रहा है और रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा जा रहा है, तो इससे कोई मदद तो नहीं मिलती है। अमरीकी सरकार इसको बहुत गौर से जांचती है। अमरीकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैदर नावट के शब्द। इस वर्ष मई महीने में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से ईरान पर अमरीकी प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं और अमरीका ने 4 नवंबर से ईरान से तेल आयात करने वाले देशों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए जाने की चेतावनी दे दी है। अमरीका ने रूस के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने अमरीकी धमकियों के बावजूद रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का समझौता किया। सऊदी अरब और इराक के बाद ईरान से भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत ने ईरान से 80 लाख टन से ज्यादा तेल खरीदा। अमरीकी प्रतिबंधों का असर भारत के ईरान में चाबहार बंदरगाह में निवेश पर भी पड़ सकता है। इस बंदरगाह में भारत ने करीब $50 करोड़ का निवेश किया है। इसे अफगानिस्तान तक भारतीय सामान पहुंचाने के लिए अहम माना जा रहा है। अमरीकी सरकार का कहना है कि इन मामलों पर गौर जारी है और जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा कि क्या भारत को प्रतिबंधों से छूट मिलेगी या नहीं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
ये थे न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी। ओडिशा में 2 दिन तक भीषण तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान तितली बंगाल की तरफ बढ़ गया है। तूफान में मरने वालों की संख्या 9 बताई जा रही है। तूफान के बाद भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से अकेले गंजाम में ही 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों के पास न खाना है और न ही पीने का पानी। प्रशासन भी अभी कई प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंच सका है। भुवनेश्वर से सुब्रत कुमार पति की रिपोर्ट सुनिए।
यह है ओडिशा और आंध्र प्रदेश तट पर 2 दिन पहले टकराने वाला तूफान तितली की शोर। यह तूफान अब ओडिशा के इलाकों को पार करते हुए बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। तितली की वजह से ओडिशा में पिछले 3 दिनों में भारी बारिश हुई है। राज्य के 21 ब्लॉक में पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश के कारण गंजाम में ऋषिकुल्या और बंसधारा नदी में बाढ़ आ गई है। विभिन्न जिलों के कई अन्य नदियों में भी बाढ़ जैसी स्थिति है। तूफान और बाढ़ ने गजपति, गंजाम, रायगढ़ और कंधमाल जिले को बुरी तरह प्रभावित किया है। तूफान और बाढ़ के चलते 4 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक केवल गंजाम में इस आपदा से 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों की शिकायत है कि उनके पास भोजन और पीने का पानी नहीं है। प्रशासन अब तक कई प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच नहीं सका है। गजपति के सरिता कहते हैं,
पानी आसले
जब पानी हमारे गांव में प्रवेश किया तो हमने अपना घर छोड़ दिया और पास के ऊंचे स्थान पर चले गए। अब हमारे पास खाने पीने या पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तूफान और बाढ़ में 9 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने 3 मंत्रियों को तत्काल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने को कहा है। है। बीबीसी से बात करते हुए विशेष राहत आयुक्त विष्णुपद सेठी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा का प्रबंधन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है।
We have deployed 42 number of mobile medical teams.
हमने 42 मेडिकल टीम तैनात की है और 145 चिकित्सा राहत केंद्र खोल दिए हैं। कुछ पुल गिर गए हैं, कई क्षेत्रों में बिजली संपर्क कट गई है। बचाव और राहत अभियान में नौकाओं और नौसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल की जा रही है। इस तूफान और बाढ़ के कारण पूरे राज्य में फसलों की भारी नुकसान हुआ है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार केवल गंजाम में 85,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की फसलें तबाह हो गई हैं। अगले कुछ घंटों में तितली का शोर तो थम जाएगा, लेकिन प्रभावित लोगों का जीवन पटरी पर लौटने में शायद लंबा वक्त लगे। सुब्रत कुमार पति, बीबीसी भुवनेश्वर।
ये बीबीसी हिंदी है और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत। अब से कुछ ही देर बाद हम जानेंगे कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या हैं, लेकिन पहले रुख करते हैं बेंगलुरु का। यहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल का मुख्यालय भी है। वही एचएएल जिसे लड़ाकू विमान रफाल को बनाने का ठेका नहीं मिला और फ्रांसीसी कंपनी ने इसके लिए अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस के साथ करार किया। अब कहा जा रहा है कि रफाल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने से एचएएल के तकरीबन 3,000 कर्मचारियों की नौकरी दांव पर लग सकती है। क्या है पूरा माजरा, सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
लड़ाकू विमान राफेल की खरीदारी एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, खासकर उस बात को लेकर कि विमान का उत्पादन कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या एचएएल को नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के रिलायंस ग्रुप को मिला है। तो इससे एचएएल के कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा? हमने यह सवाल एक पूर्व कर्मचारी और एचएएल वर्कर्स यूनियन के पूर्व सचिव आनंद पद्मनाभा से पूछा। उन्होंने कहा, करीब 3,000 लोगों की नौकरी जाएगी। अगर एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो उनकी नौकरी को कुछ नहीं होता था, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को नहीं मिलने से फैक्ट्री बंद नहीं हो जाएगी। अगर ये बंद हुई तो समझ लीजिए कि भारतीय वायुसेना की पीठ टूट गई है। ये थे आनंद पद्मनाभा के शब्द। दरअसल मामले ने अभी जोर इसलिए पकड़ा है क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एचएएल के कर्मचारियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हालांकि मैनेजमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी उनकी मीटिंग में गया तो वो नियमों का उल्लंघन करेगा, लेकिन एचएएल के पूर्व कर्मचारी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या एआईटीयूसी के कार्यकारी अध्यक्ष एच महादेवन कहते हैं, इस विषय में राजनीति को छोड़कर देखें तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन के बयान से हर किसी को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा था कि एचएएल राफेल बनाने में असमर्थ है। ये थे एच महादेवन के शब्द। महादेवन का बयान उसी तरह है जैसे एचएएल के चेयरमैन टी सुवर्णराजू ने रिटायर होने के बाद एक अखबार को पिछले महीने इंटरव्यू दिया था। सुवर्णराजू ने कहा था कि एचएएल के पास उतनी ही क्षमता है जैसे वो Sukhoi-30 बना रहा है, लेकिन एचएएल के एक और पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सी जी कृष्णदास नायर इस विषय को अलग नजरिए से देखते हैं। एचएएल और देश के लिए आगे का रास्ता ये है कि हमें सार्वजनिक निजी मॉडल अपनाना चाहिए। पहले भी एचएएल में जब कभी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जाता था तो हम उसको निजी कंपनियों और मध्यम और छोटे उद्यमों के साथ मिलकर करते थे। ये बेवकूफी होगी अगर कोई ये मानकर चले कि कोई और एक चीज को नहीं बना सकता। ये थे डॉक्टर सी जी कृष्णदास नायर के शब्द। डॉक्टर नायर का मतलब ये है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस के पास तो प्लेन बनाने का कारखाना नहीं है, तो वो एचएएल को प्लेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अब जान लेते हैं दिल्ली से छपे अखबारों की आज की सुर्खियां क्या है। सरुप्रिया
दिनेश, सबसे पहले तो जो महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री हैं मेनका गांधी, उन्होंने घोषणा की है कि जितने भी ये मीटू से संबंधित जितनी भी खबरें आ रही हैं, जितने भी आरोप आ रहे हैं, उसको उनको जांचने के लिए, उनको देखने के लिए वो एक पूरा जो रिटायर्ड जज हैं उनकी एक कमेटी का गठन करेंगी। सबसे पहले तो ये। दूसरा ये कि जो बहुत सालों से चल रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है वो बनकर अब तैयार हो गया है। 182 मीटर लंबा स्टैचू है और इस महीने के अंत में इसका अनावरण भी होगा। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जो उन्होंने बताया है कि जो अब नवंबर का जैसे महीना आने वाला है और जो किसान है पंजाब हरियाणा के, जो कटाई के बाद जो बच जाता है फसल का हिस्सा पराली, उसको जलाते हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम जो जुर्माना है वो हमें ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बजाय कि जो इसके लिए जो हमें चाहिए टेक्निक चाहिए निकालने के लिए, जो मशीनें चाहिए वो ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। इसके अलावा अभी कल हमने खबर बताई थी कि 111 दिन से अनशन पर थे प्रोफेसर GD अग्रवाल, उनका निधन हो गया 86 साल की उम्र में, और वो गंगा के लिए सफाई के लिए अनशन कर रहे थे। इसी पर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है कि जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट 3 साल पहले शुरू किया था केंद्र सरकार ने, और जिसका दावा वो कर रहे हैं कि 2020 तक उसकी सफाई का 80% काम पूरा हो जाएगा गंगा का, लेकिन जो एक पूरी रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि अभी तक सिर्फ 10% प्रोजेक्ट भी पूरे नहीं हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्होंने इसमें इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा भारत अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बन गया है, और इसके अलावा एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल है, बड़ा ही दिलचस्प है कि जो वर्ल्ड बैंक ने एक रैंकिंग निकाली है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जिसमें भारत का जो स्थान है 157 देशों में से 115वां स्थान है, और इसका मतलब ये है, ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये बताता है कि आज इस वक्त जो बच्चा भारत में पैदा होगा वो अपना केवल 44% ही प्रोडक्टिव हो पाएगा, क्यों, अगर उसको अच्छे से एजुकेशन और हेल्थ मिलती तो वो अपने पोटेंशियल का पूरा ले पाता, लेकिन हम बहुत ही पीछे हैं इस इंडेक्स में।
बहुत शुक्रिया सरुप्रिया।
BBC इंडिया बोल।
केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर बड़े फिल्म एक्टर, निर्देशक, लेखक और पत्रकारों पर महिलाओं ने लगाए हैं गंभीर आरोप। अमेरिका से शुरू हुए मीटू आंदोलन के तहत खुद पर हुई जातियों के खिलाफ भारत में भी आवाज उठा रही हैं महिलाएं। क्या मीटू के बाद महिलाओं की स्थिति में बदलाव होगा? इस बार इंडिया बोल में यही है बहस का विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 12 अक्टूबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
अब बात भारत प्रशासित कश्मीर में निकाय चुनावों की। वहां निकाय चुनावों का आज तीसरा चरण है। मतदान को लेकर लोगों में कितना उत्साह है और प्रशासन की ओर से क्या हैं सुरक्षा के इंतजाम, बता रहे हैं श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
आज सुबह 6 बजे से जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। मतदान का यह सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। बीते 2 चरणों में अभी तक करीब 2300 से अधिक उम्मीदवारों के हक में मत का इस्तेमाल किया गया है। इन चुनावों में कुल 2900 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण के लिए जारी मतदान में आज 365 उम्मीदवारों के लिए 96 वार्डों में मत का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने अपने एक बयान में बताया है कि साफ सुथरे मतदान के लिए कश्मीर में 222 संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए ऑब्जर्वर्स को रखा गया है, जबकि जम्मू क्षेत्र में 19 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ऑब्जर्वर्स को तैनात किया गया है। जम्मू में इन चुनावों का आज आखिरी चरण होगा, जबकि कश्मीर घाटी में इन चुनावों का चौथा और आखिरी चरण 16 अक्टूबर को होगा। जम्मू कश्मीर में हो रहे इन चुनावों के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इन चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम देने के लिए जगह जगह पुलिस और सुरक्षा बलों के नाके लगाए गए हैं। IG CRPF कश्मीर जोन रवि दीप साही।
थर्ड फेज की पोलिंग के लिए हमने एक पुख्ता इंतजाम किए हैं सिक्योरिटी के। अभी वोटिंग हो रही है, वहाँ पे हमने एक एडिक्वेट सिक्योरिटी प्लान के तहत हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज हमारी इंटेंसिफाई कर दी है, चेकिंग फेज की चल रही है, ताकि जो की आम आवाम वोट डालने आए उसको एक सुरक्षा का माहौल।
कश्मीर के अलगाववादियों ने आम लोगों से इन चुनावों का बहिष्कार करने की अपील की है। राज्य की मुख्य राजनीतिक पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इन चुनावों का बॉयकॉट किया है। इन चुनावों को लेकर कश्मीर घाटी में खुलकर कोई उम्मीदवार अपना चुनावी प्रचार नहीं कर पाया है, और न ही आम लोगों में इन चुनावों को लेकर कोई गर्मजोशी है। राज्य में हो रहे इन चुनावों में सीधा मुकाबला BJP और कांग्रेस के बीच है। ये चुनाव राज्य में 13 वर्षों के बाद हो रहे हैं। इन चुनावों के नतीजे 20 अक्टूबर को आएंगे। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में विशेष सचिव रहे तिलक देवेशर की एक किताब आई है, पाकिस्तान एट द हेल्म, जिसमें उन्होंने 1947 से लेकर अब तक के पाकिस्तानी शासकों के जीवन के दिलचस्प पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की है। मोहम्मद अली जिन्ना न सिर्फ पाकिस्तान के संस्थापक थे बल्कि उसके पहले गवर्नर जनरल भी थे। पाकिस्तानी शासकों के जीवन पर श्रृंखला की पहली कड़ी में रेहान फजल नज़र डाल रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना के उथल पुथल भरे जीवन पर।
हमें हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी दर में जमा करना होगी।
ये आवाज है पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की। ऐसे लोगों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है जो सिर्फ अपने बूते पर न सिर्फ इतिहास को एक नया मोड़ देने की कुव्वत रखते हैं, बल्कि वो दुनिया का नक्शा बदलने का दम भी रखते हैं। नया राष्ट्र रचने का श्रेय भी इतिहास में बहुत कम लोगों को गया है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की गिनती उन लोगों में की जा सकती है। तिलक देवाशेर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के शासकों पर एक किताब लिखी है, पाकिस्तान एट द हेल्म। जिन्ना के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए देवाशेर कहते हैं,
उनकी जो की चीज मुझे जिन्ना की लगी कि वो एक बहुत ही सफल वकील थे और उन्होंने पाकिस्तान की वकालत बहुत बेहतरीन तरीके से की और 7-8 सालों में पाकिस्तान बन गया। मगर ये जो हर एक वकील के पास एक ब्रीफ होता है कि क्या वो आर्ग्यू करेगा, ये ब्रीफ उनका ब्रीफ नहीं था। उन्होंने ये ब्रीफ नहीं लिखा था, ये ब्रीफ अंग्रेजों ने लिखा था और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ाया और उसको आर्ग्यू उन्होंने ब्रिलियंटली किया। दूसरी बात है कि बहुत ही रिजर्व्ड और अलूफ किस्म के आदमी थे और वो आम तौर पे लोगों से या आवाम से बिल्कुल घुल मिल नहीं सकते थे, जिस तरह की गांधी जी थे या पंडित नेहरू थे कांग्रेस के वो लीडर से, तो बिल्कुल ही अलग अलूफ किस्म के थे। और इसी वजह से उनकी जो शादी थी जो एक पारसी महिला से हुई थी वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं कर सकी, क्योंकि उन्होंने महिला ने देखा कि आई कांट रीच इनटू हिम, मैं उसे समझ नहीं सकती।
1947 में भारत पाकिस्तान की आज़ादी से एक महीने पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना को भारत पाकिस्तान के संयुक्त गवर्नर जनरल के लिए मनाने की कोशिश की थी। माउंटबेटन की दलील थी कि अगर आप पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं तो आपका अधिकार क्षेत्र सीमित हो जाएगा, लेकिन जिन्ना ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था,
क्योंकि फिर उन्होंने अगले जुमले में कहा कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो मेरी बात मानेगा। ना तो वो गवर्नर जनरल ही सिर्फ नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी थे और अपनी ही कैबिनेट में एक मंत्री भी थे। तो एक तरफ से जो पाकिस्तान में आजकल आप देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, तो ये जिन्ना से शुरू हुआ। सारी उन्होंने हुकूमत अपने कब्जे में रखी।
सत्ता के हस्तांतरण के समय जिन्ना ने ख्वाहिश प्रकट की कि उनकी कुर्सी लॉर्ड माउंटबेटन की कुर्सी के ऊपर रखी जाए, लेकिन उसे ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था।
14 अगस्त को माउंटबेटन दिल्ली से आए थे तो उनको स्वेयर इन करने के लिए, क्योंकि जब तक वो स्वेयर इन नहीं होंगे वो गवर्नर जनरल नहीं बनेंगे, तो उनकी कुर्सी वो चाह रहे थे कि मैं ऊंची हूँ और माउंटबेटन नीचे बैठे। तो फिर अंग्रेजों ने कहा भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप तभी गवर्नर जनरल बनेंगे जब इंडिया का वॉइसरॉय आपको स्वेयर इन करेगा, तब तक आप गवर्नर जनरल नहीं है। तो माउंटबेटन आपसे नीचे नहीं बैठ सकता, वो आपकी बराबरी या ऊंचाई पर बैठेगा। तो बहुत मुश्किल से जिन्ना ने ये माना तो उनकी कुर्सी फिर नीचे की गई, पर उनका ये गुरूर था, उनका ये बारे में ये फीलिंग थी कि नहीं, मुझे माउंटबेटन से ऊपर होना चाहिए।
ये एक ऐतिहासिक सत्य है और जिन्ना का खुद का भी मानना था कि पाकिस्तान को उन्होंने ही बनाया है।
इस्कंदर मिर्जा जो डिफेंस सेक्रेटरी बने फिर बाद में प्रेसिडेंट बने, जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने जिन्ना से कहा कि हमें मुस्लिम लीग के बारे में कोई कंसिडरेट होना चाहिए, उनको अच्छी तरह से उनका व्यवहार करना चाहिए। तो जिन्ना ने कहा क्यों, तो उसने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। कहता कौन कहता मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान मैंने बनाया अपने स्टेनोग्राफर के साथ। तो ये उनके विचार थे मुस्लिम लीग के बारे में।
कराची में जिन्ना का दिन आमतौर से 8:30 बजे सुबह शुरू होता था। एक बड़ी मेज के पीछे बैठे जिन्ना के सामने कागजातों का ढेर रख दिया जाता था। पास ही में क्रेविन ए सिगरेटों का एक डिब्बा रखा होता था। उनके पास बेहतरीन क्यूबन सिगार भी होते थे जिनकी सुगंध हमेशा कमरे में भरी रहती थी। जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का एक राजनीतिक नेता मानते थे, न कि धार्मिक नेता। इसकी वजह से उन्हें कई बार धर्म संकट से भी गुजरना पड़ा था। मशहूर लेखक के एल गौबा ने एक जगह लिखा है कि एक बार 1936 में उन्होंने जिन्ना को एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। जिन्ना बोले, मुझे नहीं पता कि नमाज किस तरह पढ़ी जाती है। मैंने जवाब दिया, आप वही करिए जो दूसरे वहां कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता था कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले जिन्ना एक जानलेवा बीमारी की गिरफ्त में आ चुके थे। उनके डॉक्टर जाल पटेल ने जब उनका एक्सरे लिया तो पाया कि उनके फेफड़ों में चकत्ते पड़ गए हैं, लेकिन इस बात को गुप्त रखा गया। मैंने तिलक देवशेर से पूछा कि अगर ये पता होता कि जिन्ना बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे तो क्या भारत का विभाजन नहीं होता?
क्योंकि वो डॉक्टर बड़े प्रोफेशनल थे तो उन्होंने कानों कान खबर नहीं किसी को देने दी। अगर ये पता होता, मुझे लगता है माउंटबेटन को पता था, तभी पहले जो पार्टीशन की डेट फरवरी 1948 में थी उन्होंने 6 महीने पहले करके अगस्त 47 में कर दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिन्ना ज़्यादा देर अब जिंदा नहीं रहेंगे। अगर गांधी जी और नेहरू और पटेल को मालूम होता जिन्ना की हालत, तो वो भी अपनी नीति बदल लेते और कहते थोड़ा टाइम और लेते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं करते, और वो माउंटबेटन प्लान को अग्री नहीं करते कि अगर ये बीमार है, क्योंकि सारा जो पाकिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान बनने का सिलसिला था वो एक आदमी पर निर्भर था, वो थे जिन्ना। लियाकत अली में इतनी काबिलियत नहीं थी और बाकी जो कैबिनेट था उनमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो पाकिस्तान की जो ब्रीफ कस्बा ने जिक्र किया वो उसको पुश कर सकें। तो उस टाइम मुझे नहीं लगता अगर इन्हें मालूम होता तो 47 में पार्टीशन शायद ना होता।
जिन्ना के आखिरी दिन बहुत तकलीफ में भी थे। 11 सितंबर 1948 को जब जिन्ना को वाइकिंग विमान से क्वेटा से कराची लाया गया तो फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे पाकिस्तान के संस्थापक का वजन मात्र 40 किलो रह गया था। जब कराची के मौरीपुर हवाई अड्डे से उनकी एम्बुलेंस गवर्नर जनरल हाउस के लिए चली तो उस बीच रास्ते में ही उसका पेट्रोल खत्म हो गया।
बहुत ही एक दर्दनाक चीज, गवर्नर जनरल जिसने पाकिस्तान बनाया, जिनको लोगों ने कैद आजम का खिताब दिया, कोई रिसीव करने वाला नहीं था। और लियाकत अली प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था। नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती थी कि जब भी जिन्ना जाते थे या बाहर आते थे पूरी डिप्लोमेटिक कोर एयरपोर्ट पर होती थी उनको सी ऑफ करने के लिए या उनको रिसीव करने के लिए। इस टाइम किसी को नहीं पता था, ना ही और कोई सिक्योरिटी थी और कोई गाड़ी थी, तो एक एम्बुलेंस जिसका पेट्रोल खत्म हो गया। आप तस्वीर करें कि एक गवर्नर जनरल की गाड़ी है और उसे पेट्रोल नहीं है और रास्ते में आधे रास्ते में वो जाके बंद हो जाए, और मिलिट्री सेक्रेटरी को 2 घंटे लगे रेड क्रॉस पे गए तब तक, और कराची का मौसम तो आपको मालूम ही है, तो उस बंद एम्बुलेंस में उस घुटन सी वातावरण में 2 घंटे के लिए जिन्ना वैसे बीमार थे तो उनकी पल्स वीक हो गई, इरेगुलर हो गई, और रात को शाम को वो खत्म हो गए।
इस एम्बुलेंस यात्रा का और विस्तृत वर्णन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में किया है।
एम्बुलेंस के पीछे के हिस्से में भाई के साथ मैं और क्वेटा से आई नर्स सिस्टर डनहम बैठी हुई थी। पीछे गवर्नर जनरल की नई कैडिलैक लिमोजिन में डॉक्टरों की टीम चल रही थी। हम 4-5 मील ही चले होंगे कि अचानक एम्बुलेंस झटका खाकर रुक गई। उस दिन कराची में बहुत उमस भरी गर्मी थी, इसके अलावा न जाने कितनी मक्खियां जिन्ना के चेहरे पर भिन भिना रही थी। दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए मैं और सिस्टर डनहम बारी बारी से उनके चेहरे पर पंखा कर रही थी। उन्हें कैडलक में नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि उसमें उनका स्ट्रेचर नहीं समा सकता था। पास ही में शरणार्थियों की सैकड़ों झोपड़ियां थी, उन्हें क्या पता था कि उन्हें उनका देश देने वाला कायद उनके बीच असहाय पड़ा हुआ है। हम 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। मेरी जिंदगी का शायद ही कोई घंटा इतना लंबा और तकलीफ देह रहा हो।
वो लोग शाम 6:10 पर गवर्नर जनरल भवन पहुंचे। जिन्ना 2 घंटे तक सोते रहे, फिर उन्होंने आंखें खोली और फुसफुसाए फाती। उनका सिर थोड़ा दाईं तरफ ढलका और आंखें बंद हो गई। 11 सितंबर 1948 को रात 10:20 पर कायदे आजम जिन्ना नहीं रहे। जो रह गया वो कुल 70 पाउंड की उनकी देह थी। एक साधारण कफन उड़ाकर उन्हें अगले दिन कराची में दफन कर दिया गया। इतिहास की एक बेहद असाधारण दृढ़ निश्चयी और रहस्यमयी हस्ती का पार्थिव शरीर आज भी उसी जगह गुलाबी पत्थर के खूबसूरत गुंबद वाले मकबरे में मौजूद है। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
यह विवेचना आपको कैसी लगी अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगले सप्ताह विवेचना की अगली कड़ी में रेहान फजल नजर दौड़ाएंगे पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति जनरल याहिया खां के जीवन पर। और अब चलते चलते मुख्य समाचार सर्वप्रिया सांगवान से।
बीबीसी समाचार। ईरान से तेल खरीदने और रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर भारत के फैसले पर अमेरिका बहुत सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहा है। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी के गायब होने और कथित हत्या को लेकर सऊदी अरब सरकार बाकी देशों से बढ़ते अलगाव का सामना कर रही है।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया देवाशीष कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात शाम को इंडिया बोल में होगी। तब तक के लिए समस्त टीम को इजाजत दीजिए। दिनेश उप्रेती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।